पिछले अध्याय में आपने देखा कि आर्यन ने इंदर को घर जाने के लिए कहा और जय की जिम्मेदारी ली। विक्रांत और जेसिका अस्पताल में जय से मिलने जाते हैं, लेकिन वो सो रहा था। विक्रांत जेसिका को दिलासा देता है, जबकि उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। सानवी जय से मिलती है, जो शुरू में दवा लेने से इनकार करता है, लेकिन सानवी के आने के बाद शांत हो जाता है। जय सानवी के सामने अपने माता पिता को खोने के बारे में रोता है। शिव मेहता सानवी का शुक्रिया अदा करता है और जय के लिए उसके महत्व को स्वीकार करता है। अप नेक्स्ट। अगले दिन सुबह सुबह सानवी तैयार होकर बाहर निकलने ही वाली थी। उसने अपने बाल हल्के से बांध रखे थे और हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। उस पैकेट में कुकीज थीं, वही कुकीज जो वो कल जय के लिए लेकर गई थी। इस बार उसने खास तौर पर इंदर के लिए पैक की थीं। सानवी के मन में इंदर के लिए सहानुभूति थी। उसे याद आ रहा था कि इंदर किस तरह अकेला पड़ गया है। उसके भाई और भाभी की अचानक हुई मौत ने उसका पूरा संसार बदल दिया था। सानवी सोच रही थी कि इंदर को इस वक्त किसी की जरूरत है जो उसके दर्द को समझ सके। तभी जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगी, बाहर से कृति आती दिखी। दीदी, आप कहाँ जा रही हो? कृति ने थोड़ा हैरानी से पूछा। सानवी ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। मैं इंदर से मिलने जा रही हूँ। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसके भाई और भाभी नहीं रहे। सानवी की आवाज़ में सहानुभूति साफ झलक रही थी। कृति ने तुरंत कहा, तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी उससे मिल लूँगी। सानवी ने थोड़ा रुककर उसकी ओर देखा। मगर तुम किस लिए चलोगी? अभी तुम बाहर से थकी आई हो, घर बैठकर आराम करो, उसने प्यार से समझाते हुए कहा। कृति ने होठों पर शरारती मुस्कान लाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका और इंदर का कोई प्यार व्यार का चक्कर चल रहा है? सानवी उसकी बात सुनकर पहले तो चौंकी, फिर उसे समझ आ गया कि कृति मजाक कर रही है। पागल मत बनो कृति, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस उससे मिलने जा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त उसे दोस्तों की ज़रूरत है। कृति जानती थी कि सानवी सच बोल रही है, लेकिन उसने जानबूझकर ये बात छेड़ी थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो इस तरह मजाक करेगी तो सानवी उसे अपने साथ ज़रूर ले जाएगी। दरअसल कृति खुद इंदर से बहुत इम्प्रेस थी। अमीर और स्मार्ट लड़के कृति को हमेशा से पसंद आते थे। सानवी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी ज़िद कर रही हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ, पर देखो, हम वहाँ बस मिलने जा रहे हैं, कोई ड्रामा मत करना। कृति मुस्कुरा दी, ड्रामा तो आप करती हो दीदी, मैं तो बस चुपचाप बैठकर उससे बात करूँगी। सानवी ने सिर हिलाया और बाहर की ओर बढ़ गई। कृति भी फटाफट अपने कमरे में गई ताकि जल्दी से तैयार होकर सानवी के साथ जा सके। सानवी को अपने घर के दरवाजे पर देखकर इंदर के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई थी, नहीं तो वो इतने दिनों से बहुत परेशान था। अरे, तुम लोग आ गए, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, उसने गर्मजोशी से कहा। जैसे ही वे अंदर आईं, कृति की नज़रें पूरे पेंटहाउस पर घूमने लगीं। वाह, ये तो कमाल का घर है, कितना खूबसूरत और मॉडर्न, कृति अपने उत्साह को रोक नहीं पाई। इंदर हल्के से मुस्कुराया, तुम लोग बैठो, मैं कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ, कृति तुरंत बोली। आप घर में काम करने के लिए कोई हेल्प नहीं रखते, सब खुद ही करते हो, इंदर ने किचन की ओर जाते हुए कहा। हाँ, मुझे खुद करना पसंद है, ये मेरा तरीका है चीज़ें संभालने का। कुछ ही देर में वो कॉफ़ी और बिस्किट्स लेकर आ गया। कृति की नज़र अचानक उस साइट पर गई जहाँ कई तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे, गिटार, कीबोर्ड और एक छोटा सा ड्रम सेट। ओह, आपको म्यूज़िक भी पसंद है, कृति उत्साहित होकर बोली। मुझे भी गिटार सीखना बहुत पसंद है, क्या आप मुझे गिटार सिखा सकते हैं? उसने जानबूझकर इंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। इंदर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गिटार सीखना इतना आसान नहीं है कृति, इसके लिए सही कोर्स करना पड़ेगा, एक दिन में ये नहीं सीखा जा सकता। कृति हल्की मुस्कान के साथ चुप हो गई, लेकिन सानवी की नज़रें अब उन इंस्ट्रूमेंट्स पर थीं। वाह इंदर, क्या तुम्हें सच में ये सब बजाना आता है? उसने उत्सुकता से पूछा। इंदर की आंखों में एक चमक सी आ गई। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें काफ़ी अच्छा हूँ, रुकिए मैं आपको अपना पहला गिटार दिखाता हूँ जो मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया था। इतना कहकर इंदर अंदर गया और एक खूबसूरत पुराना गिटार लेकर आया। वो गिटार बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। ये मेरे लिए बहुत खास है, उसने गिटार धीरे से सानवी के हाथों में देते हुए कहा। सानवी ने गिटार को ध्यान से देखा और बोली, वाह ये तो बहुत खूबसूरत है, तुमने इसे कितने अच्छे से संभाल कर रखा है, इंदर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्योंकि ये सिर्फ एक गिटार नहीं है, ये मेरे बचपन की यादें हैं, जब भी मैं इसे बजाता हूँ मुझे अपने डैड याद आते हैं, सानवी ने उसकी आंखों में झांकते देखा। उसे महसूस हुआ कि इंदर के दिल में अभी भी अपने परिवार को लेकर गहरा दर्द है, उसने हल्की सी मुस्कान दी। कृति ध्यान से देख रही थी कि इंदर सानवी से बहुत प्यार और अपनापन से बात कर रहा था, लेकिन जब भी वो खुद कुछ कहती इंदर का लहजा थोड़ा रूखा सा हो जाता। उसे ये बात चुभ रही थी, मगर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बैठने के बाद कृति उठी और सानवी की ओर देखकर बोली, दीदी अब हमें चलना चाहिए, देर हो जाएगी। सानवी ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ ठीक है इंदर, हम चलते हैं। वे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कृति पहले बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही सानवी जाने लगी, इंदर ने अचानक उसका नाम पुकारा, सानवी। सानवी रुकी और उसकी तरफ मुड़ी। इंदर धीरे धीरे उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई, प्लीज़ फिर आती रहना, इंदर ने धीमी भावुक आवाज़ में कहा। सानवी एक पल के लिए चौंक गई। उसने हल्की मुस्कान दी और धीरे से जवाब दिया, ठीक है, जरूर आऊंगी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। उसके चेहरे पर हल्की झिझक और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। बाहर निकलते समय वो थोड़ी असहज और उलझन में महसूस कर रही थी। इंदर की इस हरकत ने उसके दिल में कई सवाल छोड़ दिए थे। जय अब घर लौट चुका था, लेकिन असली परेशानी अभी भी बनी हुई थी। जय का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो अक्सर गुस्से में आ जाता, ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता और नर्स के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। नैनी भी बार बार परेशान हो जाती थी। दोनों ही उसे संभालने की कोशिश में थक चुकी थी। उनके लिए आर्यन का ये व्यवहार सहना मुश्किल हो रहा था। उधर आर्यन को अपना बिजनेस भी देखना था। कंपनी का सारा काम अब उसी पर आ गया था, क्योंकि जगत, जो अब तक उसका पार्टनर था, अब नहीं था। काम का बोझ इतना बढ़ गया था कि आर्यन खुद को दोनों तरफ से टूटता महसूस कर रहा था। एक तरफ बिजनेस की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ जय की देखभाल। दिन पर दिन उसका तनाव पड़ रहा था। आखिरकार एक शाम नर्स और नैनी दोनों देव के पास पहुंची। देव भाई, नर्स ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम इस बच्चे को अब नहीं संभाल सकते। ये बहुत मुश्किल है। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर दिन वही गुस्सा, वही चिल्लाना। हम हार मान गए। नैनी ने भी हामी भरी, हम दोनों अब और नहीं रुक सकते। आप आर्यन साहब को बता दीजिए। ये कहकर दोनों वहां से चली गईं। देव वही खड़ा रह गया। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो समझ रहा था कि ये खबर सुनकर आर्यन की परेशानी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल, आपके सीन को मैंने सही ग्रामर, स्मूथ फ्लो और थोड़ा विस्तार देकर लिखा है ताकि ये और प्रभावशाली लगे। वहीं इंदर, जिसे सानवी दिल से पसंद थी, वो अपने मन ही मन उसे चाहता था। इंदर चाहता था कि सानवी उसके करीब रहे। इसी सोच में उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। इंदर ने सानवी को फोन किया। हेलो सानवी, उसने हल्की मुस्कान महसूस कराने वाली आवाज में कहा, मेरे लिए तुम्हारे पास एक ऑफर है, अगर तुम स्वीकार करोगी। सानवी ने थोड़ी उत्सुकता और चौक के साथ पूछा, क्या ऑफर? इंदर ने थोड़े झिझकते हुए कहा,
क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकती हो? असल में तुम जानती हो कि मेरे घर में कोई काम नहीं करता। अगर तुम खाना बनाओगी तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा। सानवी थोड़े देर के लिए चुप रह गई। उसकी आंखों में हल्की हंसी और थोड़ी हैरानी थी। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सानवी के मन में हल्की उलझन थी।